नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश की युवा पीढ़ी को गौरवशाली ऐतिहासिक विरासत से रूबरू कराने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों से अवधि पार वाहनों को जब्त करने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज नई दिल्ली में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार प्रदान करेंगे। और झुंझुनू में जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित करने के मामले में राजकीय बीडीके अस्पताल के 3 चिकित्सा अधिकारी निलंबित। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश की युवा पीढ़ी को गौरवशाली ऐतिहासिक विरासत से रूबरू कराने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में कल पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि जिला स्तर पर स्कूलों के विद्यार्थियों को क्षेत्रीय स्मारकों पर नियमित यात्राएं करवाई जाएं। उन्होंने राजस्थान पर्यटन विकास निगम की संपत्तियों की प्रभावी निगरानी करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जल्दी ही नई पर्यटन नीति लाई जाएगी। इससे राज्य में पर्यटन की गति को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन स्थलों पर आधारभूत सुविधाएं विकसित होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य में इको, रूरल, हेरिटेज और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन भी किया जा रहा है। एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आवागमन को सरल और सुगम बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर जांच करने और गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों से अवधि पार वाहनों को जब्त करने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा है। आयोग ने इससे संबंधित जानकारी एक नोडल एजेंसी के माध्यम से आयोग को भी देने के निर्देश दिए हैं। बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आयोग ने संबंधित राज्य सरकारों के साथ ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रेप के सख्त कार्यान्वयन के लिए समीक्षा बैठक की। इस दौरान धूल बढ़ाने वाले सभी कार्यों को रोकने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। इस बीच प्रदेश के विभिन्न शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए राज्य सरकार ने जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। राज्य के सभी थाना अधिकारियों को अपने क्षेत्र में पराली जलने से रोकने के लिए पाबंद किया गया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन ने कल इस संबंध में आदेश जारी किए। यह आदेश उच्चतम न्यायालय के 7 नवंबर को जारी निर्देशों की पालना में दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि अगर थाना क्षेत्र में पराली जलाने की घटना होती है तो थाना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिला कलेक्टरों द्वारा फसल अवशेषों को खेत में ही जलाने की प्रवृत्ति को रोकने और फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन के लिए उपखंड स्तर पर समितियों का गठन किया जा रहा है। हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि जिले में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।
ग्रेप लागू करने के बाद भरतपुर NCR में लगाई गई पाबंदी के बाद नगर निगम और रीको द्वारा लगातार शहर में पानी का छिड़काव कराया जा रहा है और रोड स्वीपर से सड़कों को भी साफ कराया जा रहा है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर जिले में किसी भी तरह से कूड़े में आग लगाने पर पाबंदी लगा दी गई है। नगर निगम के साथ ही प्रदूषण विभाग के अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। रीको क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को भी बंद करा दिया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों का निरीक्षण भी किया जा रहा है और पालन नहीं करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 7 स्टोन क्रेशर इकाइयों को भरतपुर में बंद करा दिया गया है और 12 जनरेटर सेट भी सील कर दिए गए हैं। ओपन बर्निंग व कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर भी कार्रवाई करने के दिए गए निर्देशों की पालना में नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
गौरतलब है कि पिछले 3-4 दिनों में प्रदेश के कई शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ा है। जैसलमेर के 3 दिवसीय दौरे के तहत आज तीसरे दिन केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉ राजभूषण चौधरी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। इससे पहले श्री चौधरी ने कल जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों का अवलोकन कर प्रगति की जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री ने इसके अलावा जिले में विभिन्न विकास कार्यों की भी जानकारी ली। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज नई दिल्ली में एक समारोह में वर्ष 2022 और 2023 के लिए उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार प्रदान करेंगे। पुरस्कार प्राप्त करने वाले 82 युवा कलाकारों में प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय भपंग वादक यूसुफ खान भी शामिल हैं। यूसुफ खान ने 20 देशों में भपंग वादन की प्रस्तुति देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कला को नई पहचान दिलाई है। संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2006 में 40 वर्ष की आयु तक के कलाकारों के लिए भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां के नाम पर इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। पुरस्कार का उद्देश्य देश के संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और आदिवासी कला रूपों और अन्य संबद्ध प्रदर्शन कला रूपों के क्षेत्र में युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करना है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थानी मंडप में बड़ी संख्या में आगंतुक पहुंच रहे हैं। राजस्थानी व्यंजनों के स्वाद के लिए मंडप में लगे काउंटरों पर लोगों की भीड़ रही। मेला थीम के अनुसार राजस्थान पवेलियन में राजस्थान की प्रगति, नवाचार और सांस्कृतिक विरासत को दिखाने का प्रयास किया गया है। आगामी महीने में जयपुर में होने वाली राइजिंग राजस्थान समिट 2024 में निवेशकों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी पवेलियन में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आधार से जुड़ी ओटीपी के जरिए कर्मचारियों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर सक्रिय रहे। इसका उद्देश्य अधिकाधिक नियोक्ताओं और कर्मचारियों को इस साल के बजट में घोषित नियोजन आधारित आर्थिक प्रोत्साहन योजना का लाभ दिलाना है। पहले चरण में नियोक्ताओं को इस महीने की 30 तारीख तक सभी कर्मचारियों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर सक्रिय करना होगा। दूसरे चरण में तस्वीर और बायोमेट्रिक विवरण की पुष्टि की जाएगी। इससे कर्मचारियों को पैसा निकालने या ट्रांसफर करने की ऑनलाइन सुविधा मिलेगी और भविष्य निधि खातों का प्रभावी प्रबंधन किया जा सकेगा। झुंझुनू के राजकीय बीडीके अस्पताल की आपातकालीन इकाई में एक जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित करने की लापरवाही सामने आने के बाद जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर अस्पताल के पीएमओ डॉ संदीप पचार, डॉ योगेश कुमार झाकड़ और डॉ नवनीत मील को निलंबित कर दिया गया है। गौरतलब है कि एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने पर उसका अस्पताल में इलाज शुरू किया गया, बाद में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शमशान घाट में दाह संस्कार के दौरान व्यक्ति की सांसें चलने लगी। इसके बाद उसे फिर अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया। कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच के लिए समिति गठित की है। भीलवाड़ा की अद्विका शर्मा ने राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम में आयोजित 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स में अद्विका ने सीबीएसई वेलफेयर गर्ल्स अंडर 17 में ये पदक प्राप्त किया। राजस्थान बैडमिंटन संघ ने अद्विका को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए 25 नवंबर से जयपुर की बस्सी पंचायत समिति से सक्षम जयपुर अभियान शुरू होगा। अभियान के तहत शिविर लगाकर दिव्यांगों का चिन्हीकरण, स्वावलंबन पोर्टल पर प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड बनाने, सरकारी योजनाओं के लाभ दिलाने और अंग उपकरण वितरण के लिए चिकित्सकों द्वारा जांच की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की युवा पीढ़ी को गौरवशाली ऐतिहासिक विरासत से रूबरू कराने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों से अवधि पार वाहनों को जब्त करने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज नई दिल्ली में उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार प्रदान करेंगे। और झुंझुनू में जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित करने के मामले में राजकीय बीडीके अस्पताल के 3 चिकित्सा अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।